का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति। हमारे मध्य आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भ्राता जी, हम सभी एक हाथ की थाली से उनका स्वागत करेंगे। भ्राता जी लगभग 1957 से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 20 वर्ष की आयु से यूथ अवस्था में ही आदरणीय भ्राता जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ गए थे। 1961 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा के साकार बाबा के महावाक्यों से प्रेरित होकर इन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और अपना ही नहीं अपने माता पिता अपने सभी भाई बहनों को इस ईश्वरीय पढ़ाई से जोड़ा आदरणीय भ्राता जी ने। और आदरणीय भ्राता जी ने सबसे पहले दिल्ली में एक चित्रशाला बनाई, जिस चित्रशाला में हमारे भारत के अनेकों सेवा केंद्रों में वो चित्रशाला प्रदर्शनी मेले या म्यूजियम में भी उस चित्रशाला का प्रयोग किया गया। भ्राता जी ने साकार बाबा से मिलकर बहुत सुंदर चित्र भी बनाए बाबा के। और 1981 में आदरणीय भ्राता जी ज्ञान अमृत वर्ल्ड न्यूवल के का जो संपादकीय भार था वो भ्राता जी को सौंपा गया। और 1992 में वापिस बाबा साकार बाबा के कहने से, मतलब बाबा के कहने से 1992 में भ्राता जी को शांतिवन बेहद के घर में देश विदेश की सेवाओं के लिए वापिस बुलाया गया। और मीडिया विंग के निर्माण के बाद भ्राता जी को उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर ना भ्राता जी, अच्छा वाइस चेयरमैन वो बनाया गया। आप बहुत ही सरलचित स्नेही सहयोगी यज्ञ के बड़े वफादार अथक सेवाधारी ऐसे हैं हमारे आदरणीय भ्राता जी। अभी हम सबके सामने साकार मम्मा बाबा के सुंदर अनुभव और बाप समान स्थिति कैसे बने, बहुत सुंदर प्रेरणाएं अभी हम सबके सामने आदरणीय भ्राता जी रखेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप सभी विजयी रत्न हैं और सबको जीवन देने वाले हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे तो हर सप्ताह यहां भट्टी होती है और यहां बैठे बैठे ही सारे भारत के हर सप्ताह में 200-250 लोग भाई बहन आते हैं, उनसे रूह ध्यान करने का मौका मिलता है, ये भी बड़ा सौभाग्य है। तो जैसे बहन जी ने कहा कि आज से 61 वर्ष पहले हमको बाबा ने चुना, आप में से कोई है जिसने साकार बाबा मम्मा को देखा हो? आप और आप विजय भी आप नहीं, थोड़ा लेट आए होंगे। तो विजय बहन जी है तो देखो, एक तो है बहुत बड़ी बात है, तब तो ढूंढने को मिलते नहीं कोई भी। तो 61 वर्ष पहले इस बाबा का परिचय मिला पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, लौकिक भाई हमारे लक्ष्मण भाई थे, उन्होंने और माता पिता की इच्छा थी कि इंजीनियर बनना चाहिए, वो मेडिकल वो डॉक्टर बनना चाहते थे हमारे लोकल भाई, लेकिन पाकिस्तान बनने के कारण नहीं बन सके, तो उनकी इच्छा थी मैं बनूं, तो हम एडमिशन लिया। तो वहां पर एक भाई थे ओम प्रकाश जी, वो भी ये ज्ञान सुनकर के 6 मास पहले वो भी पढ़ने के लिए आए थे। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या होता है, क्या हमारी ड्यूटी है, ज्ञान सुना तो सुनाएंगे नहीं तो चैन नहीं आएगी, तो ये ब्राह्मणों का फर्ज है, कर्म है कि ये जो ज्ञान सुना औरों को सुनाना। उन्होंने भी सुनाना शुरू किया, काफी बहस बाबासा के बाद वो कहे आप आत्मा, हम कहे तो हम आत्मा नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास, ये तो शरीर है मशीनरी है, कोई पुर्जा फेल होगा तो खत्म, जैसे और मोटर गाड़ी होती है, बहुत समय तक बहस होती रही तो लेकिन एक दिन का आप मान जाओ, तो हमने कहा अच्छा आज मान लेते हैं, बस इतना मेरा मुख से निकलना था कि मैं मान लेता हूं कि मैं आत्मा हूं। उसी वक्त बाबा ने इसे पकड़ लिया, एकदम बुद्धि को यानी मिसमराइज कर दिया, फीलिंग वो अनुभूति होनी शुरू होगी, ये अभी भी हम कहें मैं आत्मा हूं, ये कहते ही जैसा ऐसा लगता है कि ये मेरे हाथ नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, ये फीलिंग आनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना हर ज्ञान की हर पॉइंट की अनुभूति होनी चाहिए, तो ऐसा लगता है ये मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न हूं। तो वो वही बात तब हमें वहां इतना कहते ही फीलिंग आनी शुरू हुई, दृष्टि वृत्ति बोल चाल चाल चलन सब बदल गया एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उन दिनों में बाबा फ्री थे, आजकल तो बहुत बिजी है, बहुत कम लोग थे और बाबा को खींचना था, बच्चे यानी सेवा में लगाना था। देखो हम बहुत सौभाग्यशाली है, एक तो बाबा ने हमको चुना, कितनी बड़ी दुनिया है, 7 बिलियन से भी ज्यादा करोड़ों अरबों लोग हैं, उसमें से हम कितने हैं, कोटे में कोई और कोई में भी कोई, आप यहां आए हैं, बड़ा सब आप आए यहां किस धरनी पर आया पाए, ये धरनी कौन सी है जहां शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और जगदम्बा सरस्वती ने यहां उनके चरण पड़े, उन्होंने उनकी मुरली चली, वो तो कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दिया, यहां ज्ञान दिया, उनकी ज्ञान वीणा चली, जिन्होंने बच्चों से खेल पाल की, है ना, वो गोपियां सब अपनी आंखों से देखा हमने, जिन्होंने ब्रह्मा भोजन किया बच्चों के साथ, यानी ये वो ऐसी धरणी है जहां बाबा ने बैठ करके बच्चों को सिखाया पढ़ाया बड़ा किया। तो ऐसी स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा, आप बताइए, देखो ये दो हस्तियां हैं, एक परमात्मा और एक ये प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती, एडम ईव आदम बीबी, जिसको सारी दुनिया किसी न किसी रूप से मानती है, श्री कृष्ण को तो हिंदू मानेंगे मुसलमान नहीं मानेंगे, लेकिन एडम ईव वो आदम बीबी को तो मानते ही है, वो एडम ईव को ही मानते हैं यानी क्रिश्चियन लोग, और शिव परमात्मा को भी मानते हैं, तो उनके ये सारा कर्म स्थली और कार्य स्थली और सारा वो क्या किया, पालना दी बच्चों को और यहां से भेजा सेवा पर भेजा। तो आप यहां कितनी योग तपस्या हुई और अब अभी भी हो रही है, कब से चली बताओ, 1954 से ऐसी जगह पर आप आए हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। तो हमें जब उन्होंने सुनाया कि आप आत्मा है तो वो अनुभूति होनी शुरू हुई, हम बाजार में जाए पटियाला में पढ़ते थे, आप तो जानते हो वहां कौन से चौक है, मुझे अब याद आ रहा है अनारदाना चौक है ना, वहां जाते थे पहले, तो जब भी मैं बाजार में चलूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। ऐसी उन्होंने पकड़ा, उसी एक बात से मैं बड़ा खुश हुआ, बॉडीलेसनेस फील होने लगा, बहुत खुशी हुई। तो हमने कहा भी ये आप और हमें सुनाओ, ये क्या चीज आपके पास है, बहुत बड़ी कोई आपके पास तो खजाना है। तो तीन चार दिन में सारा ज्ञान सुन लिया, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, परम धाम, राम कौन है, रावण कौन है, सारी बातें हमें सुन ली और इतनी खुशी हुई। आप मैं गया था रशिया में, तो एक भाई ने पूछा आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था, मेरे से पूछा प्रश्न, तो मैं आपसे पूछता हूं आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था, बताओ। हाँ जी, एक बताया पता तब लगे, आप बताओ बहन जी सबसे बड़ा खुशी का दिन, जिस दिन बाबा मिले। मेरा उससे पहले हो गया जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला, इस ज्ञान को सुनकर के इतनी खुशी हुई, मेंटली इतनी सेटिस्फेक्शन हुई, कंटेंटमेंट हुई, बुद्धि खुल गई, मैं कहां ये ज्ञान है, बता आप सोचो विचार करो इस ज्ञान पर। बाबों को दिखाते ना वो विष्णु जी को शेष सैया पर लेटे हुए हैं, शेष सैया पर, और वो लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, ऐसा दिखाते हैं। बाबा ने तो निकाल दिया था उसको, लक्ष्मी को हटा दिया था, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या बात है, मेरी कोई सेवा में कमी है? उसने कहा नहीं, मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके जो मैंने वो तो श्री कृष्ण मानते ना, उसको याद करके मुझे खुशी हो रही है, मुस्कुरा रहा हूं। आप भी विचार करो कितना वंडरफुल ज्ञान है। मैं गया एक दफा गया था सिंगापुर, कहां पर, मैंने कहा ये ज्ञान कोई कॉमन ज्ञान नहीं है, ये वंडरफुल है, रीजनेबल है, आप सोचो साइंटिफिक है, प्रैक्टिकेबल है और रमणीय का ज्ञान ये। तो देखिए कितना अच्छा ये ज्ञान मिला, तो बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा उसको पूछा, मैंने कहा दैट वॉज माई हैप्पी डे, नॉट हैप्पीएस्ट, वो जो पहले ज्ञान सुना मेरी बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत खुशी हुई थी। तो सारा ज्ञान, आप देखो ज्ञान है कितना सुंदर, एक एक बात, वो ज्ञान सुनाने वाला कौन है, कोई मनुष्य नहीं सुना सकता, ऑल माइटी अथॉरिटी वंडर, नहीं वो जो ऑल माइटी है, इतनी पावर है उसमें, वो ही बता सकता। आप बताइए, सारी दुनिया आज लगे पड़ी है रामायण के ऊपर, राम था, रावण था, वो सीता चुराई गई, वो कौन था, हनुमान जी उठा के लाए पार, रावण के दस सिर थे, ये था वो था, कितना मारा मारी, कितनी लड़ाई झगड़े दिखा दिए, वो लक्ष्मण मुंह से तो गया तो लोग रोते हैं जब वो उसका सीन आता है। तो ये एक वो बड़ा, कितनी बड़ी कहानी हम नहीं कहेंगे, लोग नाराज हो गए, कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ बना दिया है। और बाबा ने क्या कहा, चंद शब्द बोले और सारी रामायण बदल दी। क्या बाबा ने कहा बोलो? अरे बाबा ने कहा बच्चे ऐसा कोई दासर वाला रावण होता है क्या, आए नहीं, और राम की सीता कोई चुरा के ले जाएगा, ले जाएगा, बोलो बहनों बहनों भाइयों, वो ले जाएगा, ले जा सकता है। यानी चंद्रवंशी महाराजा है, फर्स्ट वो पहला है, क्या उसकी स्त्री चुरा के ले जाए, आजकल कितनी रीजनेबल बात है नहीं ये, तो ये कितनी बड़ी बात है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा बच्चे ये आत्मा में तो रावण में तो आत्मा ही नहीं है, और सब आत्माओं में रावण है, तो कितनी वंडरफुल बात है। था ना बाबा मुरली में एक दिन कहा कि बच्चे आत्मा रावण में तो आत्मा ही नहीं है और सभी आत्माओं में रावण घुसा हुआ है आजकल, तो कितना अच्छी बात सुनाई। इसी प्रकार से वो महाभारत है, ये कौन बोल सकता है, ये हु कैन स्पीक कि रामायण इस प्रकार नहीं इस प्रकार है, सीता है तुम वो, हम सब सीता है, देखो चाहे भाई है चाहे बहन, हम सीता है, राम वो है, शिव बाबा हमको रावण के पंजे से चुड़ा करके कहां ले जाता है, अयोध्या, जहां झगड़ा अभी भी चल रहा है राम रावण का, वो राम और बंदर का, अयोध्या मन अयोध्या नहीं होता, वो गोल्डन एज सत्य हो गए। तो ये है उसका रहस्य, बाबा ने ये बताया, लोग क्या क्या कर रहे बताओ। तो ये कहने वाला कौन है, स्वयं अथॉरिटी है। ऐसे महाभारत को देखो आप, क्या क्या बातें सुनाई है। और बाबा ने एक ही शब्द एक ही सेंटेंस बोला, बच्चे मैंने तो ज्ञान द्वापर में दिया नहीं मैंने, तो कलयुग के अंत में दिया, संगम पर दिया, सारा जो महाभारत भी बदल दिया देख लो। तो इन बातों को सुनकर के बड़ी खुशी हुई, बहुत ऐसा लगा कि ये जो ये ज्ञान देने वाला उनसे मिलना चाहिए, ये कौन दे रहा है इतना ऊंचा ज्ञान। मतलब बचपन में भक्ति बड़ी की जो सब बातें बुद्धि में बैठी हुई थी, तो ये है ये चीजें। बड़े हमारे लोग एक फादर ने बहुत भक्ति की थी, हमें भी सुनाते थे किसे कहानियां, वो पुराण भागवत पुराण ये पुराण सब सुना हुआ था। तो बस हमने कहा भी हमें वो भेजो जहां से ये आपको ज्ञान मिलता है। उन्होंने कहा उस वक्त क्या था कि ये मधुबन कैसा था मालूम आपको, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, बहुत बिल्डिंग बन गई है, केवल बीच का टीन का था बस, और उसमें बाबा मम्मा और सब बहने भी रहती थी। उस वक्त तो सेंटर बहुत कम थे पंजाब में, पता कितने सेंटर थे, एक अम्बाला कैंट, हरगोबिंदपुर, अमृतसर और शाहबाद, ये पंजाब हरियाणा में सेंटर थे, कोई सेंटर था नहीं। और सारे हिंदुस्तान में कितने सेंटर होंगे, 8-10 होंगे मुश्किल से, दिल्ली में 1-2 थे, बॉम्बे में 1-2, न कलकत्ता था न पटना था, ना साउथ में तो कोई था ही नहीं, तभी की बात है 1957 की। तो सब हमने कहा अच्छा आए, बाबा आए दिल्ली में आए हुए थे, वहां मिलने के लिए गए, क्योंकि अकबर टाइम पहले बहुत ले लिया तो मैं जल्दी करूंगा। तो दिल्ली में बाबा से मिलना हुआ सुबह अमृत वो क्लास के बाद, बाबा के पहले बाबा मम्मा से कैसे मिलते थे, सभी गोद में जाते थे, चाहे छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, सब बाबा मम्मा की गोदी में जाते थे और आंसू बहाते थे। हमारे भी आंसू है, क्योंकि क्यों आंसू आते थे, 5000 वर्ष के बाद फिर से मिल रहे थे, देखो बाबा से मिल रहे, 5000 वर्ष से बिछड़े हुए हम भाई बहन। एक हमारा मित्र आया, वो कहां से, रादौर से, वो हमारा क्लास फेलो था, कहते एक बात मुझे यहां समझ नहीं आई, मैं क्या और कल ज्ञान मर, एक कहते यहां पर इतनी खातरी क्यों करते हैं आप लोग, वो ये कहता है। मैंने कहा चलो बंद कर दें आपने कहा, कहते यहां आते हो पहले हमें गाड़ी से ले आते हो, फिर जगह रहने की अच्छी देते हो, खाना पीना खिलाते हो, सौगात भी साथ देते हो, ये रीजन क्या है इसका। मैंने कहा देखो भाई आप सोचो, किसी का भाई बहुत काल से बिछड़ जाए, यानी 20-25-30-50 साल से, जब वो मिलेंगे देखो कितनी उनमें आपस में प्रेम होगा, खुशी होगी, कितनी खातरी करेगा, और आप तुम्हें 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, इसलिए हम आपकी खातरी करते हैं। तो मतलब कहने का ये है, तो बाबा से मिलते थे तो बहुत वाते थे, किसी को आंसू आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे देखा। तो बाबा से फर्स्ट टाइम मिले तो बाबा ने एक वरदान दिया हमको, मुझे पूछा कि उनको पता ही था शायद, क्योंकि वहां तो थोड़े लोग थे ना, फटाफट कोई यहां बच्चा पैदा हुआ तो बाबा को पता लगा, वहां तो सेंटर खोलेगा तो एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो आजकल क्या हो गया, रिट्रीट सेंटर खोलना भी बड़ी बात आ गई है, वहां तो एक छोटा सा सेंटर भी खुलता था तब बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा ने कहा बच्चे इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई, 5-4 साल पढ़ोगे, मुश्किल पढ़ाई है, और विनाश तो सामने खड़ा हुआ है, और आपकी ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये बाबा के महावाक्य मेरे प्रति थे, इतना फेथ था बाबा को कि 15-20 दिन के बच्चे को भी बाबा ने ऐसा बता दिया वरदान। आप कहेंगे मेरे लिए तो वरदान था, लोग कहेंगे देखो ये कैसा बाबा ने बोल दिया, हमारे तो वरदान था कि देखो बाबा स्वयं मेरे लिए बता रहा कि यानी भृगुरी जी कि तुम्हारा आपका भविष्य क्या है। तो हमने कहा ठीक है फिर पढ़ने, हमारा वैराग तो पहले आ चुका था। तो हम वापस गए, मम्मा से मिले, बाबा से मिले, सारे भाई बहन बात है, जगदीश भाई, सारे पूर्वज और दादा विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, सबसे मिलना हुआ, पूरा परिवार जैसे, क्योंकि जहां बाबा होते थे सारा परिवार होता। तो बाबा को लेटर लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू बी इंजीनियर, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस बिल्डिंग यू आर इरेक्टिंग ऑफ द गोल्डन एज, कि मैं जो बहुत बड़ा महल आप बना रहे हैं उसमें मैं भी एक पत्थर बनना चाहता हूं, और आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड हाईवेज, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज। ऐसा पत्र लिखा बाबा ने, फिर उसका जवाब इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में जवाब आया, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर पेरेंट्स। ये ज्ञान अपने माता पिता को भी दो और अपने इंजीनियर साथी को भी दो। हमने जो बाबा ने कहा हमने वो कोशिश की पूरी करने की, बल स्थूल चीजें थी तो आके हमने अपने रूम में जहां रहते थे पटियाला भूपिंद्रा रोड, जब आप पटियाला में वो जीन पटियाला से निकले ना, हमारी मिट्टू दादी तो बाद में आई, तो वहां हमने उससे पहले हम इंजीनियरिंग काले में थे, वहां आए और दरी बिछा दी, बल्ब लगा दिया, ग्रामोफोन ले आए, वो सुई वाला, वो गीत गाने बजाने शुरू कर दिए, अपना एक कमरे में क्लास शुरू कर दी। तो कोई हमारे इंजीनियर साथी आए, अच्छा लगा, सुना उन्होंने, और बाबा मामा से भी उनको मिलाया, फिर चले नहीं चले, थोड़े बहुत चले, तो वार्डन ने कहा यहां तो ऐसा हो सकता नहीं, रूम छोड़ के अपना एक बाहर भूपिंद्रा रोड पर बड़ा मकान लिया, दादी जानकी जी वहां पर आए, उन्हें ब्रह्मा भोजन किया, तो मतलब कहने का सेवा हमने शुरू कर दी, जो बाबा ने कहा हमने शुरू कर दी सेवा करनी। बस उसके बाद ना क्लास में मिस होती गई हमारी, कि पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं, डिसइंटरेस्ट हो गया बिल्कुल, कि सेवा कर दिए तो ये कर दिया, विनाश उस समय भी लगता था कि विनाश सामने खड़ा, हम बताए आप जैसे अभी लगता है ना, तब भी ऐसा लगता था कभी कोई झगड़ा कभी कोई झगड़ा कभी कोई झगड़ा, जब से शिव बाबा धरती पर आया है झगड़े तो और बढ़ते चले गए हैं, देखा मैं बस कोई ना कोई झगड़ा रहता ही रहता है, आप देखो क्या है, क्योंकि बाबा कहता है भाई विनाश ज्वाला कहां से निकली है, लोग तो वो नाराज होंगे हमारे कहने से, विनाश ज्वाला इस यज्ञ से तो निकल रही है, और क्या है ब्रह्मा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तो विनाश ज्वाला तो निकलेगी, तब भी यही झगड़े थे देख देख के। तो हमने जो किया उसका उस प्रकार दादी जानकी जी आया, कभी उनको चंडीगढ़ ले गए, कभी नाभा ले गए, कभी कहीं ले गए, जगह जगह सेवा केंद्र खोलने की हमने कोशिश की, जो बाबा ने कहा था सेवा करो। और फिर समर वेकेशन थी तो हम अपने लौकिक घर गए, हमारे माता पिता को ज्ञान सुनाया, हमें डर नहीं था किसी का भी, एक इंडिविजुअल थे यानी विद, और बहुत जोश था और वो था मोमेंटम था, ऐसे नहीं कि वही ढीले ढाले चले, ऐसे बात नहीं, उनने कहा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, माता जी पिताजी भाई बहन हमारी सब ने कहा बहुत अच्छा है, लक्ष्मण जी नहीं थे मतलब तो, लेकिन हमारे लौकिक पिताजी ने एक शर्त रखी, ज्ञान तो अच्छा है, उनको मैंने लिख दी, ये होती ना कमेंट्री, आप आत्मा है परमात्मा की संतान है, वो उर्दू जानते थे, लिख के वो खेत में जाएंगे, हमारी जमीन थी 34-35 एकड़, वो जाएंगे तो वो अंदर अंदर बोलते जाएंगे, जैसे कमेंट्री करते जाएंगे, उनको तो अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त है, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे तब मैं ज्ञान को मानूंगा। मैंने कहा मुझे तो आज तक दिखाया नहीं कोई, क्यों मैं तो अभी नया नया हूं, आपने बाबा से मिले हैं मम्मा से मिले हैं, कैसे दिखाएगा आपको। तो फिर भी हम वहां बैठते थे, माता जी मारे थे, भोग लगाते थे गुरुवार को, अपने समर वेकेशन था, छुट्टियां तो थी, तो वो एक बार क्या वो उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, कभी इधर वो घूम रहे हैं और किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ में नहीं आया वो चीज, वो नीचे उतर के आए। मैंने क्या हुआ, मुझे खुशी हो रही है कुछ ना कुछ देख रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा बहुत छोटा सा सुंदर श्री कृष्ण मुझे दिखाई दिया, कि वो श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे, हमारा बाबा भक्त वत्सलम भी है, भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करता है, ऐसा हमने देखा है। तो बस वो मैं पकड़ता था यहां से यहां, मेरे हाथ में नहीं आया, उदास हुए कि मुझे कृष्ण को मैं गोद में नहीं ले सका। फिर आके था आपके बाबा जी है, उसने कहा बाबा का कहा कि यदि आप इस ज्ञान को धारण करोगे, सभी धारणाओं को चलोगे और भोजन शुद्ध करोगे, जो हमारी चीजें थी वो बताई, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। उसने कहा ठीक है, शुरू कर दिया, वो इतने 50-55 साल के होंगे शायद, वो तो शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट गुरुवार को फिर भोग में गया, फिर वो ध्यान में गया, जाकर के फिर श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बड़े खुश हुए, आंसू बहाए, उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। और मुझे कहा जी बिल्कुल ठीक है ज्ञान, तो और इतने ऐसे ध्यानी बन गए, हम कह जाओ बाबा से पूछ के फटाफट जाके संदेश ले। मैंने कहा कमाल है। तो मैंने बाबा को लिखा हमारा लोक एक फादर ध्यान में जाता है। मैं तो बड़ा खुश था, मैं बाबा को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाबा ने कहा बाबा ने भी बहुत ध्यान देखा है, ये नहीं वो हवा निकाल दी कि ऐसे नहीं कि ध्यान की बड़ी बात है। तो हमें तो बहुत बड़ा लगा भी ध्यान में जाए कोई ना भी कोई बिना कोई कोई किसे मिला है, ना बाबा से ना मम्मा से ना कि सेंटर पर गए, लेकिन ध्यान में वो ऐसा ध्यान में जाते थे कि वो सब चीज बता देते थे। यहाँ जब फिर मधुबन में आते थे तो मम्मा उनको गद्दी पर बिठाती थी, प्यारे लाल जाओ बाबा से पूछ के आओ, बाबा को भोग लगाओ। इतने वो उनकी बाबा ने उनको दिखाया सब कुछ। तो वो हो गया सब, इससे सारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में आ गए। लक्ष्मण जी बाद में आए हमारे लौकिक भाई, लेकिन सारा परिवार इस ज्ञान में आ गया। गांव वाले बड़े इम्प्रेस हुए कि उनको भगत जी कहते थे, इनको क्या हो गया। उसके बाद फिर हम एक बार मधुबन में आए, मधुबन में दिल्ली में तो कई बार बाबा मामा से मिलने आना जाना होता रहा और बाबा से इंस्ट्रक्शन और लेते रहे क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार मधुबन में है, मैं मधुबन की बात सुनाता हूँ। तब क्या था, वो बीच का था और उसमें क्लास होती थी, केवल दो तीन संध्या थी, एक बाबा की एक मम्मा की, ये जो ईशु दादी का है ना वो लंबा का हाल था वहां, और कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं थी ना, ये ट्रेनिंग सेंटर ना ये ना हिस्ट्री हॉल कुछ नहीं था, और ये टेनिस कोर्ट था जहां बाबा का भी बना हुआ शांति स्थल। तो हम वहां पर आए तो देखा बाबा वो खेल रहे हैं वहां बच्चों के साथ। बताओ क्या खेल रहे होंगे वो? बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट खेल रहे हैं एट द एज ऑफ 80। जब वो दादा बिशुद्धन बाल फेंकते हैं वो लगाते हैं दौर से और बच्चे पकड़ते हैं, जैसे बच्चों को खिलाने के लिए बाबा खेल रहे थे। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, एक कैमरा था मैं फोटो ले, बाबा ने खेल बंद किया और मुझे कहा फोटो मत लो। मैंने कहा क्यों नहीं लेते, चलो बाबा कहते हैं। तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, शिक्षा दी कि बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा था? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों की आत्मा है, न ब्रह्मा बाबा का फोटो आएगा आत्मा का, न शिव बाबा का आएगा। और ये कही शरीर तो छींची है, ऐसा बोला। मैंने कहा देखो बाबा क्या करे, बात तो राइट है, शरीर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो आत्मा की है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा नहीं लेते। फिर बाबा ने कहा भले बच्चे ले लो फोटो। इस प्रकार से हमेशा बाबा जो थे शरीरों से ध्यान हटवाते थे, चाहे अपना शरीर हो चाहे किसी और का शरीर हो। कहता है शरीरों को मत देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। हर बात में शिव बाबा को लाते थे। हम मनो भोजन ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, शिव बाबा के सारे बाबा मम्मा सब बैठते थे, तो बाबा पूछते थे किसके साथ भोजन कर रहे हो? हम कहते शिव बाबा के साथ। घूमने जाएंगे नक्की लेके, क्लास के बाद नक्की लेके जाते थे घूमने, बाबा के पीछे पीछे हम आगे, वो मुड़ के पूछेंगे बच्चे किसके साथ चल रहे हो? हम कहते शिव बाबा के साथ। चाहे ना याद हो लेकिन कहते थे चल रहे हैं, क्योंकि हर वक्त तो याद होता नहीं था। तो मतलब कहने का यह है कि बाबा बार बार शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ही याद कराते थे। सुना? तो जैसे कि ये पक्की आदत डलवाते थे कि भाई खुद ही बाबा कहते थे मैं किसके साथ भोजन कर रहा हूँ, शिव बाबा के साथ। बार बार खुद भी याद कराते थे, हमें भी याद कराते थे। इस प्रकार से कई बार बाबा मम्मा से मधुबन में आए मिलने, ये हुआ दिल्ली में मिले तो काफी नजदीक होते गए और लौकिक परिवार वाले भी ज्ञान में आ गए। पढ़ाई हमने कोई की नहीं, डिसइंटरेस्ट था, पढ़ने की इच्छा नहीं थी और लेक्चर मिस करते थे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं, फिर भी चार साल पांच साल के बाद हम पास हो गए। ये मालूम नहीं कैसे पास हुए। आई टेल यू क्लियरली, पढ़ाई ना करने के बावजूद भी बाबा ने पास कराया। आप कहेंगे क्यों? इसलिए पास किया भाई बच्चा मेरे पास आएगा कोई सेवा में लगेगा, चलो एक डिग्री तो इसके पास होगी, हम कह सकेगा मैंने भी इंजीनियरिंग पास की हुई है, उसमें भी सेवा है। तो हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, सच कहते हैं आपको। कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहा है, कभी हापुड़ का केस है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी भोग है, इसी इन्हीं चीजों में लगे रहे। आप कोई कहेंगे देखो जी क्यों नहीं किया, अब हमारा पास ऐसा था क्या करते, कहेंगे देखो जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, ये ठीक थोड़ा है ज्ञान में आकर के। अब वो जमाना नहीं, आप तो पढ़ो लिखो कुछ भी करो। उस जमाने की बात है जब हैंड्स कम थे और बाबा को हैंड्स चाहिए थे। तो हम बाप जब गए लौकिक माता पिता को लेकर के, यहाँ आए बाबा पढ़ाई पढ़ के, डिग्री लेने नहीं आज तक गए, लेकिन हम भाई पास हो गया ये पता लग गया। तो बाबा मम्मा ने, बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैंने तो कहा था ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। भेज दिया फौरन हमारे पास, किस कहां भेजा, दिल्ली भेज दिया जगदीश भाई जी के पास। आप बताओ कितनी फोर साइकिडनेस है भी, क्या बाबा को पता आगे क्या होने वाला। जैसे भृगु ऋषि जब जानता है ना, नहीं तो जगदीश जी के पता नहीं आपको मेरे पास क्यों भेजा है, इतने पढ़े लिखे को मां काम स्थूल था, मां को वो तो काम नहीं था भाई कोई ज्ञान सुनाना किसी को, वो तो प्रेस में जाओ। फिर मुझे याद है एक दफा हम उनकी तीसरी मंजिल पर कमला नगर का सेंटर था, वहां से एक उठाया बंडल कागज का, नीचे उतरने लगे, 8-10 इंच की सीढ़ी थी, पांव फिसल गया मेरा। तो जगदीश जी कहते हैं अच्छा अभी तो शुरू हुआ है, क्या बोला उन्होंने, वो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मैंने तो, मैं तो पक्का मजबूत था अभी तो, 21 साल कितनी होगी, 25 साल की एज थी। मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, चिंता ना करो, सीढ़ी आपकी ऐसी है फिसल के। तो मतलब मैंने कहा बड़े हंसते फुरते बैठते बहलते हुए जगदीश भाई के साथ 4-5 साल रहने का हुआ, सर्विस करते रहे, जो कार्य मिला सब किया। ये नहीं कि हमें भाई साइकिल चलाई खूब, फिर स्कूटर चलाया खूब, फिर ऐसा सब दिल्ली में 25-30 साल रहे हम दिल्ली में इस सेवा पर, जगदीश भाई के साथ भी और भी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बाबा ने मुझे बुलाया मधुबन से, यहाँ ना सॉरी दिल्ली से बुलाया कि बच्चे आओ, और मैं अभी बैठा हूँ क्लास में, कहता बच्चे बॉम्बे जाओ, वहां एग्जीबिशन लगी थी तो मैं भेज दिया वहां पर, टिकट पहले भेज थी ये लीजिए और जाइए। वहां पर गए दादी प्रकाश मणि थी और गांव देवी में, और एग्जीबिशन लगी थी, पहली एग्जीबिशन हमारे वो लगी थी संस्था की। तो देखा हमने वहां पर समंदर के किनारे पर, पकवासा ने उसका उद्घाटन किया था गवर्नर ने, अच्छी लगी है, सारा देखता के पूरा बुद्धि में कॉपी कर लिया। और फिर बाबा के पास वापस आए, बाबा को सुनाया ये अच्छा है ये अच्छा ये अच्छा, तो कॉपी हमने कर ली कि हमको ये बनानी कैसी है, क्योंकि हम कॉपी करने में होशियार थे, पास भी ऐसे हुए थे। तो वापस आए हम दिल्ली में, तो हमें कुछ अपने लोग के घर से ही मिला था कुछ, तो हमने एक चित्रशाला खोल दी, 4-5-3-4 आर्टिस्ट लगा दिए, एग्जीबिशन बनानी शुरू कर दी। चित्र जो आप देख रहे हैं ये अभी तक वही है, ये है वो है, कई चित्र जो है वो तभी के बने हुए शायद, मैं समझता हूँ। हाँ ये स्वर्ग का सीन भी वही का है, और रेस भी वही की है, तभी की बने हुए ये। तो कितने साल होगी पता नहीं, कैसे जिंदा रहे हुए, बहुत पुरानी है। तो हम बनाई चित्रशाला, उसके बाद हम 20 चित्रों का सेट लेकर के बाबा के पास है, ऑयल पेंटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट थी मधुबन में, हिस्ट्री ऑयल बन चुका था, और शायद बाबा मम्मा या दीदी मम्मा थे बाबा थे, सारा उन्होंने चित्रों को देखा, देख करके अच्छा लगा उनको, फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया बाबा ने, कमरा देखा ना बाबा का आपने देखा है, एक वो स्टेज वो पड़ी है, गद्दी पड़ी है पर छोटी सी, एक चार पही है, और वो अभी तो बाबा का चित्र है तब नहीं था। तो मैं नीचे बैठने लगा, बाबा ने कहा मेरे साथ बैठो यहाँ गद्दी पर, तो मैंने कहा गद्दी पर कैसे बैठो, फिर भी बैठाया बाबा ने, प्यार किया बाबा ने, एक महावाक्य उच्चारण किया, बड़ा वरदान जबरदस्त आप सभी के लिए है। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, पक्का जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, आगे क्या बोला होगा, यहां भी और वहां भी, वहां कहां बोलो, सत्य में, कितना बड़ा वरदान है, मिल गई किसके मुख से निकला, भगवान के मुख से निकला, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। अब देखो आप क्या समझते हैं, जो आप जिस गद्दी पर आप जैसे बहने तो आई सेवा केंद्र पर, क्या समझते हैं, वो कहते हैं बाबा का सेवा केंद्र है, और आपका घर किसका है, वो किसका है बोलो, पक्का हाँ, ये बाबा का समझना है। जो भी कारोबार है, जो भी आप करते हैं, ये समझो कि ये बाबा का है, बाबा ने मुझे एक ड्यूटी दिया करने के लिए, तो उसमें पर वो निमित्त वो ट्रस्टी बन के संभालेंगे, बाबा का समझेंगे, तो वो बाप का गद्दी हो जाएगी, तो यहां भी जो बच्चों की गद्दी वहां भी गद्दी मिलेगी। तो हम अब क्या करते हैं, हमारा ज्ञान उम्र बमन है, हमारा क्या बाबा का, हम किसका, हमारा थोड़ा है, बाबा का है, हम संभालते हैं, यहां संभालते हैं तो वहां भी संभालेंगे। देखो बाबा ने एक कुछ दिन पहले मुरली में एक ऐसी जबरदस्त पॉइंट आई थी, बाबा ने खुद बाबा पानी से बात कर रहे और जवाब भी दे रहे हैं। बाबा ने कहा मैंने अपना पूरा तन मन धन जन सब कुछ अर्पण कर दिया, अपनी रेपुटेशन भी, इतने रिप्यूटेड बाबा थे, बात मत पूछे, बहुत बातें हम टाइम तोड़ा, बहुत रिप्यूटेड, बड़ी रेपुटेशन थी, इसको दादा कहते थे, मुखी कहते थे सिंध में, महाराजाओं से इनका कनेक्शन था। एक बात मैं सुनाता हूं कश्मीर के महाराजा की, दादा नारायण ने सुनाई थी कि एक दफा ये हर साल जाते थे वहां पहलगाम में, पूरा होटल लेके सारा परिवार जाता था और फिर वो उनको अपना रसोईया होता था, वो बाबा जाते थे। तो बाबा एक बार गए, सारा सेटल करके होटल वाले को इतना पैसा देंगे, सारा सेटल हो गया, लिखा पड़ी होगी। लेकिन जब उस एक महीना बीता वो बहुत मांगने लगा, वो समझे स्वामी ये स्वामी तो बहुत बड़ी है, और लो इनसे और लो और लो। उसने कहा नहीं, जो बात की है वो देंगे। तो केस किया महाराजा के पास, वहां उन दिनों में महाराजा ही फैसला करते थे, कोर्ट कोई होते नहीं थे, वो हरि सिंह का बाप था। बाबा की इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी, बात मत पूछी। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं, मैं कहता हूं नहीं, बाबा का तन भी असाधारण था, ऐसी पर्सनैलिटी मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं, आपने देखी पता नहीं। तो वो शाइनिंग फेस, बिविचिंग आईज, और बड़ा अच्छा लगता था। तो जब वो बाबा कहते हैं वो कोर्ट में, जैसे वो हरि सिंह के दरबार में गए, हरि सिंह के बाप वो कोर्ट में खड़ा हो गया, बताइए क्यों, वो फिर जल्दी बैठ गया। उसने कहा ये तो मेरा बल वो है, मेरी पेशी के लिए है, मैं उठकर, इतना इतना बाबा का इंप्रेस पर्सनैलिटी को, खुद ही ऑटोमेटिक उठकर खड़ा हो गया, फिर जल्दी बैठ गया, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। तो बाबा का तन भी और मन भी और धन भी अपार था, हम बताएं आपको, साधारण नहीं था। वो सुनाते थे हमारे दादा नारायण कि जब वो दादा की जो पहली पहले बड़े लड़के की शादी हुई, 34 में हुई, 33 में कब हुई, तो ब्रिजेंद्र दादी उनकी बहू थी आई, वो हर हमेशा एक दिन के बाद अपने फेंके जाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज होता है। तो जब वही कहता उसने 2,90,000 के गहने पहने हुए थे उसने, तो कितना धन होगा, धन भी कम नहीं था, अपार था, तन भी ठीक, मन भी ठीक, धन भी अपार, तभी तो 14 वर्ष तक इतने को खिलाया। तो ही बात, मैं बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं, वो साधारण ही एक असाधारण ही तन था, देखा जाता, हम बताया। तो ये मैं बता रहा था कि फिर ये हमें बाबा ने भेज दिया, चित्रशाला खोली, बाबा ने कहा बाप की गद्दी से बच्चों की गद्दी, इतना नशा चढ़ा, इतनी खुशी हुई, इतना उमंग उत्साह बाबा ने भर दिया, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, मेले बने, दिन रात उस चित्रशाला में काम हुआ, हर एक चीज हाथ से बनती थी। अब ये चित्र खड़ा हुआ है ना, ये एक एक चीज हाथ से बनाई हुई है, कोई कंप्यूटर से बनाई हुई नहीं है। तो बड़ा अच्छा हुआ, खुश हुई, बाबा ने एक सेवा हमारे मन का, एक तो बाबा ने हमको चुन लिया, अपना बना लिया, अपना बनाने के बाद किसी कार्य में लगा दिया, ये बहुत बड़ी सेवा है। आप भी जो कितना कार्य करते होंगे, कितनी बाबा की सेवा करते होंगे, करते करते फिर हम ये जगदीश भाई फॉरेन जाने लगे, तो उन्होंने मैं कहा एक ज्ञान अमृत भी संभालो, इसी मीटिंग में बुलाया गया था, कहा ज्ञान अमृत संभालो, लिटरेचर संभालो, वो भी बाबा ने सेवा दे दी, चलते रहे सेवा होती रही। पहले फिर वहां से 92 में दिल्ली से यहां आ गए, उस समय हमारी मैगजीन केवल 35,000 थी, अब 3,50,000 है, 10 गुना हमारी जो है वो ज्ञान अमृत बढ़ गया, कि सेवा बढ़ती जा रही है, बच्चे बाबा के बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। हम एक बताऊं आपको बात, जब हम आए थे बाबा उन दिन में वाणी क्या चलाते थे, 20-30 बैठे होते थे, बाबा कहता था बच्चे यहां बड़े बड़े साधु संन्यासी आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, सिनेमा वाले आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, तो मंदिर कहते थे बाबा अभी तो हम 20-30 बैठे हुए हैं, तो ये कब आएंगे। हमें शक नहीं था भगवान हो वाच। अब देखो वो सब पूर्ण हो रहा है, कितनी भीड़ है, नीचे देखो भीड़, ऊपर देखो भीड़, ज्ञान सरोवर में भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है। अब देखो 15,000 जुगल नीचे आ रहे हैं। अभी कन्या आई थी, कन्या ही कन्या देखो, कन्या बैठी सारी, वो सड़क पर निकलती थी, वो लंबी लाइन हो जाती थी उनकी। तो भगवानों वाच के सारे बातें पूरी हो रही है और ये पूरा हो रहा है। लेकिन बाबा ने एक और भी कहा है, वो भी पूरा होगा। क्या कहा बाबा ने, हमें सावधान होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, जो तुम अब इन आंखों से देखते हो वो नहीं दिखेगा, और जो नहीं देखते हो वो दिखेगा। मैं अभी एक हमारा भाई केरल से आया है, अपना अनुभव सुनाया, बहुत दर्दनाक अनुभव है बड़ा। उसका बिल्डिंग है वहां पर, सेंटर के सामने बिल्डिंग है, कहता पानी 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 पानी, हमारी फर्स्ट बिल्डिंग पानी, और उसके साथ उसमें क्या सांप बिच्छू चूहे और वो सारे जो तंग करने वाले चीजें हमारे सामने, बच बच्चे कैसे है। एक दीदीश भाई की किताब है, लिखा उसमें कि अंत का सीन कैसे होगा, दर्दनाक हो रहा है वो देखो। कहता क्रोकोडाइल भी आपके घर में अंदर आ जाएगा, मानो सांप आपके अंदर घर में आएगा, इतना पानी हो जाएगा, ये होने वाला है ये। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सावधान होकर के बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में तेज हो जाना चाहिए। क्या बाबा कहते हैं, क्या बनना हम सभी को बोलो, क्या लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी या नारायण दोनों बनेंगे, क्या बनेंगे बताओ। हाँ जी, हमारा अभी का क्या पुरुषार्थ है, क्या बनना है। हाँ जी, क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण तो सत्संग में बनेंगे, अभी क्या बनना है, हाँ? फरिश्ता। हाँ, देखो बहुत बड़ी बात है, फरिश्ता बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। आप तो भट्टी किया काफी कुछ बन गए होंगे, बन गए क्या, अभी बनना है, अभी क्या क्या है, कितने नजदीक पहुंच गए बोलो, हाँ या ना, कितने परसेंट, 90% तो बन गए होंगे, है जी। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, 90% फिर है जी, ज्यादा बन गए, अच्छा ऐसे भी। अब बनना है तो देखो, पहले सुनो, वो मीटर देखो क्या है उस बनने का, सुन लो आप, मैं मीटर बताता हूँ, नहीं नहीं उसका मीटर भी सुन लो, क्या है बनने का, कहां तक बनना, मीटर क्या है। देखिए पहली अवस्था यह है कर्मातीत फरिश्ता बनने की, पहली स्टेज क्या है मालूम है, विकर्माजीत। कोई विकर्म हम ब्राह्मणों से अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब इससे आगे निकलिए कि नहीं, कोई विकर्म होता है अभी, हाँ या ना, नहीं, वेरी गुड। कि अब हम विकर्म नहीं करते, अगर विकर्म करते तो रात स्टेज है, बहुत पीछे है। अब विकर्म होना बिल्कुल नहीं, विकर्म जो है ब्राह्मणों की डिक्शनरी से बाहर, कोई विकर्म नहीं। और सेकंड स्टेज क्या है, इसमें तो आप पास हो गए, सेकंड स्टेज क्या है बोलो, सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत। मैं तो ये हमेशा सुनाता हूं कि विकल्प कोई नहीं आना चाहिए, अब बुरा संकल्प और शुद्ध संकल्प से परे। इसमें भी पास होंगे, सब पास है, हाँ या ना बोलो, थोड़े बोल रहे हैं, पूरे सब नहीं बोल रहे, जो पास है हाथ खड़ा करो, बहुत तो कुछ कम है अभी। देखो पास होना चाहिए, अब विकल्प नहीं आने चाहिए, कितने सालों से आप है और भट्टी क्या कर रहे हैं, नो विकल्प, विकल्प माने अशुद्ध संकल्प, कहाँ आता होगा, नहीं आता होगा, आप शायद समझे नहीं है, आपका विकल्प थोड़ा आएगा भाई, हम तो बाबा के यानी पवित्रता के सागर बाप के बच्चे हैं, अब विकल्प कहाँ, विकल्प से नुकसान बहुत है, पता क्या नुकसान है, विकल्प आया मीन डरो, बैटरी डिस्चार्ज, सुन लो, आत्मरूपी बैटरी आप जो चार्ज किया है ना, तो वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, फटाफट निकालो उसको, आने मत दो, निकालो बुद्धि से मन से, नो विकल्प, ठीक है, विकल्पाजीत भी बन गए होंगे आप, बन जाएंगे, बन ही गए होंगे मैं समझता हूं। थर्ड क्या है फिर, थर्ड स्टेज बोलो, थर्ड स्टेज क्या है, व्यर्थ अतीत, व्यर्थ ना हो। बाबा हमारे अभक्त बाप दादा ने कहा था बच्चे कि मेरे बच्चों में थोड़ा विकल्प भी नहीं है, विकर्म भी नहीं है, थोड़ा व्यर्थ है कभी कभी, बाबा ने थोड़ा कहा था, तो व्यर्थ भी नहीं चाहिए, व्यर्थ मीन ये क्यों, क्या, कब, कैसे, जिसका कोई मतलब हमारे साथ है नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो व्यर्थ भी नहीं चाहिए, व्यर्थ अतीत बनना है। अगर कर्मातीत फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ से परे चले जाओ। वो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं समझता हूं नहीं होगा, बहुत कम होगा, होगा भी। और चौथी स्टेज क्या है फिर, और इससे आगे, साधारण अतीत। हमारा कोई संकल्प साधारण न हो, यह पुरुषार्थ। हमारे बाबा में, मम्मा में कुछ साधारण नहीं था। क्या था? उनका हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था। आप कहेंगे कैसे? मन बाबा ऐसे किसी को देख लेंगे, वो उड़ जाता था। वो कहता था वाह बाबा दृष्टि दे रहे। किसी पर ऐसे भी हाथ रख देते ना, वो फूला नहीं समाता था। बाबा की हर चाल, खान पान, हर चीज विशेष थी, हर कर्म विशेष था। तो हम किस क्या बनना चाहते हैं? बाप से मानना। तो हमारा भी हर कदम भी ऐसा हो, कर्म भी ऐसा हो, बोल भी ऐसा हो, और संकल्प भी विशेष हो, साधारण ना हो, तभी तो बन सके। क्या ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत फरिश्ता कम बात है क्या? आदि देव यानी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, आप वैसा बनना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा पुरुषार्थ। तो करना क्या है? हम देखो अभी आप नीचे से ऊपर आए, मैं पूछूं आप क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ नहीं जी। आप पैदल चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अरे भोजन कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, बाबा कहता मैं भी भूल जाता हूं, कुछ नहीं सोचते, वी आर डूइंग नथिंग। हमारे बहुत काम ऐसे होते हैं जिसमें हमको बुद्धि देनी नहीं पड़ती, उस समय को हमें सफल करना है। योग में बैठना वो तो ठीक है, सुबह करते हैं योग, अमृत वाला करते हैं, वो तो सफल होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जो कुछ नहीं है हमारी है, जो नथिंग हम है, उसको समथिंग में या समर्थ में ट्रांसफर करो, बदलो। उस वक्त सोचो मैं कौन हूं, बाबा ने जो संकल्प दिया क्या बाबा ने कहा है, क्या सोचना है, मैं कौन और मेरा कौन, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये बहुत बड़े हम बताएं, देखो एक ला बाबा ने बताया, दुनिया वाले कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये सब कहते हैं, सारी दुनिया मानती है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन बाबा ने ये कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बाबा ने ला बताया। तो ये अगर हम जैसा सोच रहे हैं, अब बाबा कहते हैं शरीर ही बनो, तो कैसे बने? अपने को मैं आत्मा हूं तब समझोगे तभी तो शरीर ही बनेंगे। बाबा कहता है फरिश्ता बनो, कैसे बने? मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, जब ये मन में संकल्प आएगा तभी तो बनेंगे। मैं खुशी का देवता हूं, जो कुछ बनना चाहते हैं उसका आपको संकल्प करना पड़ेगा। देखो वो एक कहानी सुनाते हैं ना, वो एक गांव के आदमी की, कि वो उसने मंत्र लेने गया गुरु से, उसने कहा ये ओम नमः शिवाय, उसने कहा मुझे आता नहीं। उसने फिर और मंत्र देगा वो भी मुझे याद नहीं होता। उसने कहा भी अनपढ़ था बेचारा, उसने कहा तुम्हें जिस चीज से ज्यादा प्यार है तो उसको याद कर। उसने कहा मुझे भैंस से ज्यादा प्यार है। तो बैठ गया कि होगा हरियाणा का तो नहीं, फिर कहां का होगा कोई। तो वो बैठ गया अपने कमरे में और भैंस को याद करने लगा, भैंस 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 ऐसे ऐसे। कुछ समय बाद कहता मैं तो भैंस बन गया हूं, मेरे तो सींग आ गए हैं, अब कमरे से बाहर कैसे निकलूं। ये जैसा सोचा वैसा बन गया वो, ये ला है। एज यू थिंक सो यू विल बिकम। तुम्हें क्या सोचना है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं। बाबा ने कितने सम्मान दिए, वो याद करनी है, बार बार याद करनी है, एक दफा नहीं। आपने क्या मैं आत्मा हूं करके बैठ गए और ऐसे से नींद करने लगे, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। भगवान वाच, मैं नहीं कह रहा हूं, अव्यक्त बाप दादा ने कहा था, ये मिसाल भी दी है, इस भैंस वाले की मिसाल दी है, मुझे याद है। और ये भी कहा था बच्चे जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज देन यू विल रियलाइज। तो ये बहुत पुरुषार्थ है अपने अंदर, महीन का, महीनता का पुरुषार्थ। अटेंशन देने की बात है, मुश्किल बात नहीं है अटेंशन देने की बात। ये तो कर सकते हैं ना भाई बहने, हो सकता है, ये रिवाइज कीजिए। और सब संकल्प देखो, योग का अर्थ क्या है कि सब संकल्पों को हटाओ और अनुशुद्ध संकल्पों को लाओ। और आत्मा के मन, जो हम एक इंसान के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे कभी नहीं रहेंगे। तो और संकल्पों को हटाओ, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, ये बार बार लाओ। और संकल्पों को आने मत दो, तो क्या हो जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे आप। एक हफ्ता भी इसका पुरुषार्थ करके देखे तो आप जहां से निकलेंगे ना, आप लगेंगे फरिश्ता जा रहा है। लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा अच्छी तरह से, एक भी संकल्प और कोई ना आए। अब मैं आता हूं ना नीचे से, जहां भाई भाई बहनों से मिलता हूं, मिलने हैं, बात करनी, तो पहले खुद मैं कोशिश करता हूं मुझे और कोई संकल्प ना आए, ये शुद्ध संकल्प है। तो हम सभी मिल करके ये करेंगे तो जल्दी हमारे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद फरिश्ता बन जाएंगे। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत गड़बड़ है, प्रकृति हमारे खिलाफ होती जा रही है। सम देख रहे हैं, कभी नेपाल में, कभी उत्तराखंड में, कभी केरल में, कोई ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ये पहले भी होता था। एक को मैंने काल का देखो जी, ये तो बहुत समय से चला आ रहा है, सभी अभी उठते जागते नहीं है वो लोग, कहते हैं हमेशा चलता रहता है। मैंने कहा ऐसा, और जब अभी एक एक प्रोमिनेंस में हो जाए और सभी प्रोमिनेंस में होना शुरू हो जाए, कौन किसकी मदद करेगा, क्या होगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। हम कहें जी हमारा तो जींद बहुत हाइट पर है, इट इज नॉट, कोई पता नहीं कुछ भी, कहीं भी कुछ हो सकता है, हम बताएं आपको। इसीलिए एक एक सेकंड को हमें सफल करना चाहिए, इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अब आप भट्टी करके जा रहे हैं, बिल्कुल भर के जा रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये योग तो बैठ के करना ही चाहिए, परंतु चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते अटेंशन हो कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां का हूं। अपने को याद करें, हम तो जो शुरू याद करने का करते हैं, अपने गुणों को याद करें, घर को याद करें, बाबा को याद करें, बाबा के गुणों को याद करें, और संबंधों से याद करें। हम तो नौ संबंधों से बाबा को इमर्ज करते हैं, पता कौन से नौ संबंध, बाबा तो सब संबंध हमारे हैं, लेकिन मुख्य जो है पहला है डियरेस्ट मदर, माँ है हमारी, हमें पैदा किया, ब्रह्मा बाबा ही सामने आएगा वो क्योंकि संबंध तो साकार में होते हैं ना, तो ही इज अवर डियरेस्ट मदर, ज्ञान दूध पिलाया और हृष्ट पुष्ट बना दिया। स्वीटेस्ट फादर है वो माता है पर दाता है वो, पिता हमारा दाता है, स्वीटेस्ट फादर है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है। हाईएस्ट टीचर है वो, भाग्य भी दाता है, कितना ऊंच पद प्राप्त कराता है। होलीएस्ट सतगुरु है, वरदाता है, वरदान देता है हमें, अनफेलिंग फ्रेंड है, दोस्त है हमारा। बहुत हमारे पास अनुभव आते हैं ज्ञान अमृत में कि कहां कहां बाबा ने हमारी मदद की, ये किया वो किया, ऑपरेशन हो रहा था जैसे पूरी लाइट दे रहा था बाबा, हमको ऐसी मुश्किल थी बाबा ने हमको बचा दिया, बाबा ने रास्ता दिखा दिया, ऐसे बड़े अनुभव आते हैं। फिर हम वो टीचर से वेरीफाई करते हैं ये राइट भी है कि नहीं, कहते हैं राइट ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा हमारा अनफेलिंग फ्रेंड है, दोस्त है, और वो सुलोना साजन है हमारा, प्यार करता है, श्रृंगार करता है, और सर्जन भी है, सुप्रीम सर्जन है, चाइल्ड बच्चा भी है। हम बताए आपको एक ऐसी स्टोरी, अब तो टाइम हो गया, स्टोरी है कि वो एक युगल था हमारे यहाँ कृष्णनगर में, उनका बच्चा 19 साल की एज में खत्म हो गया, अकेला ही बच्चा था वो डॉक्टर थे। तो क्या हुआ, बेचारे बहुत दुखी हो गए, वो घर से निकलना बंद कर दिया, सफेदी करना बंद कर, सालों साल तक कुछ नहीं करे। तो उनने हमें अचानक देखा, अभी हम आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। उनका ये लोग कुछ अच्छे थे, अच्छे होंगे, क्योंकि उनको डर था कि मेरी प्रॉपर्टी और ना कोई ले ले। तो उसको हमने मिले जुले थोड़ा समझाने की कोशिश, ज्ञान बुद्धि में बैठा, क्योंकि बच्चा शरीर छोड़ा था, उसने भगवान को शिव बाबा को बच्चा बना लिया, बच्चा बनाया। हम बताएं आपको, अपनी प्रॉपर्टी भी उसने कहा मेरा मकान इस कार्य में लगा दो। जब उसने शरीर छोड़ा, जैसे वो डांस करता हुआ जा रहा है, बाबा उसको डांस करा रहा है, उंगली पकड़ के ना जैसे उसको नचा रहा है, इस प्रकार से। तो भगवान जो है, शिव बाबा जो है, वो फेथफुल चाइल्ड भी है, और सबसे बड़ी बात है मोस्ट बिलवड माशूक भी है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ये सारी बातें हम याद करते हैं, रू रिहान करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, अपने से बातें करते हैं, ना नींद आएगी और खुशी से हम नाचते रहेंगे। नींद क्यों आती है? जब हम सुनते हैं तो नींद आती है, अगर बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी। अगर हम बाबा से बातें करेंगे तो नींद नहीं आएगी, अगर हम अपने से बातें करेंगे तब भी नींद नहीं आएगी। इसलिए अमृत वेले में जब भी टाइम मिले कुछ अपने से ये जो रू रिहान करें हम, और बिंदु बन बिंदु को तो याद करना है, वो तो जरूरी है। तो इस प्रकार से पांच स्वरूपों को याद करें तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने बहुत युक्ति बताई है कि शुद्ध संकल्पों को हम जमा करते चलें, करते चलें, करते चलें, तो शुद्ध संकल्पों से क्या मिलेगा? पावर भी मिलेगी, प्योरिटी भी मिलेगी। सत्य में क्या चाहिए? क्राउन ऑफ पावर और क्राउन ऑफ प्योरिटी, ये दोनों चीजें मिलती है पॉजिटिव थिंकिंग से, बाबा की याद से और शुद्ध संकल्पों के संकलन से। आशा है आप तो करते ही होंगे और इसको आगे बढ़ाओ। ये हम भी करते हैं, आप भी करो, आगे बढ़े। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। मम्मा बाबा के अनुभव सुनाकर हमें भी बाबा की पालना का अनुभव करा दिया ना?